ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभम् चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्यघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय భవాయ నమః ఓం నమో భవాయ మృడాయ నమః ఓం మృడాయ నమః ఓం మృడాయ నమః ఓం నమో మృడాయ మృడాయ నమః ఓం మృడాయ నమః ఓం నమో మృడాయ మృడాయ నమః ఓం మృడాయ నమః ఓం మృడాయ నమః ఓం నమో మృడాయ మృడాయ నమః ఓం మృడాయ నమః ఓం నమో మృడాయ శివాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ భజ మన శివ శివ నిరంతరం జప మన శివ శివ నిరంతరం భజ మన శివ శివ జప మన శివ శివ నిరంతరం రట్ట మన శివ శివ నిరంతరం స్మర మన శివ శివ నిరంతరం రట్ట మన శివ శివ స్మర మన శివ శివ నిరంతరం ఓం నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ్ ఓం 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 ఏక వర్ష కే బాద్ एक दिन लेट लतीफ हो गए भाई प्राविधिक के हिसाब से लेट हुआ है वैसे नियमित 30 तारीख को हमारे आने की संभावना थी पक्की थी संभावना क्या प्लेन का टिकट था और एयरलाइंस ने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया 30 का तो कल पहले तारीख की फ्लाइट निश्चय किया है तो हमने इस भाई को फोन किया था कि ऐसा ऐसा हुआ है क्योंकि काठमांडू से हफ्ते में 3 फ्लाइट है डायरेक्ट और या बाया दिल्ली घूम के आओ तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है फिर इंटरनेशनल डोमेस्टिक डोमेस्टिक इंटरनेशनल ये झंझट भी रहता है इस के चलते हमने सोचा कि सीधे जाएं तो उसके चलते एक दिन लेट हुआ है कोई बात नहीं पहुंच गए आ गए सुरक्षित आ गए गत वर्ष प्रवचन के क्रम में एक संकल्प किया गया था या विचार हुआ था कि वेदांत की जो प्रकरण ग्रंथ है जिस पर पूरे वेदांत की प्रक्रिया सन्निहित है। उस पंचदशी ग्रंथ को शुरू करें और दो चार साल में पूरे पंचदशी पर प्रवचन की शैली से व्याख्या हो तो इस संकल्प के साथ हमने पिछले बार पंचदशी शुरू की थी। और पंचदशी में पहला प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण हमने पूरा भी किया था। और कहा था कि आगे का जो प्रकरण है इसी तरह हर साल जब तक पंचदशी पूरी नहीं होती एक रिकॉर्ड बना रहेगा, क्योंकि ये सुविधा सिर्फ प्रेमपुरी आश्रम में ही है कि दैनंदिनी प्रवचन का अभिलेख रिकॉर्ड में इंटरनेट में रखने का संस्थागत और कहीं भी ये सिस्टम नहीं है जो प्रेमपुरी आश्रम ने किया है। तो इसके माध्यम से देश विदेश में जहां भी रहते हैं सभी को वह निरंतर एक ग्रंथ के बारे में सुनने को मिलेगा, ये सोच बना हुआ था और पिछली बार हमने ये शुरू किया था। लेकिन अभी पता चला कि उस पंचदशी को प्रातःकालीन स्वाध्याय में भी उसको शुरू कर दिया गया है। तो हम असमंजस में पड़ गए तो इस बात को लेकर असमंजस में हो गए कि प्रवचन भी पंचदशी और स्वाध्याय भी पंचदशी, इसमें भी कोई फर्क न पड़ता। फर्क यहां पड़ने जा रहा है कि प्रवचन में भी द्वितीय प्रकरण शुरू हो रहा है और स्वाध्याय में भी द्वितीय प्रकरण ही शुरू हो रहा है, एक ही प्रकरण। प्रवचन में भी वही और स्वाध्याय में भी वही। प्रवचन तुरंत समाप्त होने के बाद स्वाध्याय में बैठेगा तो वही प्रकरण पड़ेगा, वही श्लोक पड़ेगा, रिपीट हो जाएगा। किसी ने कहा कि नहीं तो प्रवचन में शुरू करो निरंतर चलो, ये भी एक समस्या है, इसमें भी एक समस्या आ जाएगी कि वो क्या है कि कुछ लोग प्रवचन में नहीं आते हैं सिर्फ स्वाध्याय में आते हैं। उन लोगों का पहले के दो चार श्लोक छूट जाएंगे और कुछ लोग सिर्फ प्रवचन में बैठते हैं स्वाध्याय में नहीं बैठते, उन लोगों का बाद के दो चार श्लोक छूट जाएंगे। तो प्रवचन और स्वाध्याय के दोनों के श्रोता एक ही होते और निरंतर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ भक्तों के या जिज्ञासुओं के सुझाव और जिज्ञासा अनुसार सुझाव अनुसार फिर क्या करें ऐसी अवस्था में, तो ये कहा गया है कि आप पंचदशी को अभी पोस्टपोन कर दो, प्रवचन में उसको स्थगित कर दो और आगे फिर कभी करना होगा स्वाध्याय का प्रकरण आगे निकल जाएगा, फिर उस प्रकरण को शुरू करेंगे, पीछे के डब्बे आते रहेंगे। अतः एक ही प्रकरण को पैरेलल में स्वाध्याय में भी प्रवचन में भी चलाते समय वो मुझे भी लगा कि कोई तुक नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में करें क्या, तो हमारे जिज्ञासु प्रिय मोहनीश उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य जी का एक वेदांत संबंधी स्तोत्र है उसको खोजा है। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने उसको शायद कभी सुना भी ना हो। और प्रायः ये पुस्तक सर्वत्र उपलब्ध भी नहीं है। अब ये तो आजकल आधुनिक विज्ञान के प्रभाव के चलते ये सुलभ हो चुका कि इंटरनेट से फिर मोहनीश ने उसको खोज कर निकाला। स्तोत्र का नाम है वेदांत का नगाड़ा, डिम डिम। स्तोत्र का नाम क्या है? वेदांत डिम डिम। तो डिम डिम तो नगाड़ा ही करता है भाई, है? क्योंकि जब नगाड़ा बजता है और वाद्य यंत्रों का आवाज जो है वो खत्म हो जाता है नगाड़े की आवाज के सामने, इतना जबरदस्त होता है कि और वाद्य यंत्रों की जो आवाज है, वाद्य है, स्वर है, वह मंद पड़ जाता है। शायद सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य जी ने इसी उद्देश्य को लेकर ये स्तोत्रों की रचना की हो। वेदांत डिंडिमः, इस पर विचार करें। स्तोत्र बहुत सरल है। वेदांत के वही पारिभाषिक जो शब्द हैं जो दैनिक वेदांत प्रवचन या स्वाध्याय में हम लोग सुनते रहते हैं, तो पद और पदार्थ के बारे में ही सब उसकी व्याख्या करने के लिए ही यह स्तोत्र की रचना हुई है। तो लगभग इसके श्लोक की संख्या कितनी मोहनीश? श्लोक की संख्या 94 यानी 94 श्लोक है। तो सरल है, सरस है और बहुत कठिन नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि दिनी रोज ही एवरेज 3 श्लोक के आधार पर हम इसकी व्याख्या करें। तो इसी प्रवचन श्रृंखला में इस स्तोत्र को पूरा कर दें। लेकिन प्रवाह में जाते जाते क्या होता है कहा नहीं जा सकता है। भगवान शंकराचार्य जी के पूर्वीय दर्शन के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, अपूर्व योगदान है। अब मुझे लगता है कि भविष्य में भी उनके बराबर या उनसे आगे या उनके बराबर भी कोई ऐसा दार्शनिक वेदांत दर्शन के लिए कोई होना भी संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं ही शिव ही आना पड़ेगा। शंकरम शंकराचार्यम सदाशिव समारंभान शंकराचार्य मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। तो इसीलिए ये बहुत अपूर्व देन है आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का। अभी भी बहुत सी उनकी रचनाएं जो अप्रकाशित हैं, अनुपलब्ध हैं, लुप्त हो चुके हैं, और ये सारा शंकराचार्य जी के ये उपक्रम हर दृष्टि से मुमुक्षुओं का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो। यूं तो उन्होंने कह दिया है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मई बना परा। स्वयं उत्तम कोटि के जिज्ञासुओं को संबोधन करते हुए कह दिया है, ये शिष्य हो, ये जिज्ञासु हो, करोड़ों ग्रंथों के द्वारा जो बात कही गई है वो मैं तुम्हें आधे श्लोक में समझा देता हूं, सबका सार आधे श्लोक में मैं समझा देता हूं। वह यह है कि ब्रह्म सत्य है, तीनों काल में उसका वाद होना संभव ही नहीं है। जगन मिथ्या है, जैसा प्रतीत हो रहा है उस रूप में हमको नहीं उपलब्ध होता। जहां दिख रहा है वहां जिस रूप में दिख रहा है उस रूप में नहीं है। मिथ्या शब्द का अर्थ ही यही है, सो अधिष्ठाने वादमानत्व मिथ्यात्व। जिस अधिष्ठान में जो वस्तु दिख रही है उसी अधिष्ठान में उस वस्तु के उपलब्ध न होना, दिखे अनुसार उपलब्ध न होना, ये मिथ्या का लक्षण है। दिखाई न पड़ना ये मिथ्या का लक्षण नहीं है, उपलब्ध न होना जिस अधिष्ठान में, जहां पर तुम जिस रूप में देख रहे हो जिस वस्तु को, वहीं पर उसी रूप में उपलब्ध न होना ये मिथ्या का लक्षण है। जगत मिथ्या है, जगत नहीं है ये बात नहीं कह रहे हैं शंकराचार्य जी। जगत नहीं है ये बात नहीं कह रहे हैं। हम सबको जगत सत्य के रूप में दिख रहा है, बिल्कुल है और यथार्थ है। शंकराचार्य इसी भ्रांति को तोड़ना चाहते हैं, कहते हैं कि जगत है ये बात हम भी कह रहे हैं, जगत है ये बात हम भी कह रहे हैं, जगत दिख रहा है ये बात हम भी देख रहे हैं, हमारे आंखों को भी जगत दिख रहा है। लेकिन जगत सत्य नहीं, देख लो देख लेने में कोई हर्जा नहीं है, छू लो छू लेने में कोई हर्जा नहीं है, समझे कि नहीं। देख लो देखने में कोई हर्जा नहीं, छू लो छू लेने में कोई हर्जा नहीं, भोग लो भोग लेने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन सत्य नहीं मानना। आप लोगों का चरित्र द्वैध चरित्र है वो। एक तरफ तो आप लोग समाज को दिखाने के लिए डुप्लीकेट नकली सामान का प्रयोग करते हो। एग्जाम्पल, आज कोई भी लोकल ट्रेन में असली ज्वेलरी पहनकर तो नहीं जाएगा ना? जाएगा है? माताओं चलते हो, देख भी रहे हैं देखने वाले, छू भी रहे हैं छूने वाले, भोग भी रहे हैं भोगने वाले, बनाने वाले बना भी रहे हैं, खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं, प्रयोग करने वाले प्रयोग कर भी रहे हैं। सभी के हृदय में ये बात पक्की है, बनाने वाला भी मैं डुप्लीकेट बना रहा हूं, उसके हृदय में ये भाव है कि नहीं? खरीदने वाला भी मैं डुप्लीकेट माल ही खरीद रहा हूं, उसके हृदय में ये भाव पक्का है कि नहीं है? पहनने वाला भी मैंने डुप्लीकेट ही पहन के रखा है, पहना है, उसके हृदय में ये पक्की बात है। केवल भ्रम में कौन पड़ता है? चोरी करने वाला। चोरी करने वाला भ्रम में पड़ता है। तीन व्यक्ति भ्रम में नहीं पड़ रहे है ना? बनाने वाला भी भ्रम में नहीं है, खरीदने वाला भी भ्रम में नहीं है, पहनने वाला भी भ्रांति में नहीं है। भ्रांति में कौन है? चोरी करने वाला, वो देख रहा है क्या बढ़िया है। इसको यदि निकाल लिया जाए, इसको ये वस्तु हाथ लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। चोरी करने वाला जब चोरी करके ले जाता है, जिसका चोरी हो गया उसको पीड़ा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहले से तैयारी में हो, डुप्लीकेट है, उसको कोई पीड़ा नहीं होती। गया, नकली है, पीड़ा किसको होगी? हैं? चोर को भी चोरी करते समय तो नहीं होगी? जब चोरी करके वो लेके जा रहा है तब तक भी उसको पीड़ा नहीं है। इधर चोरी हो चुका है उसको भी पीड़ा नहीं है। जब वो बेचने जाता है ज्वेलरी की, यहां कहता है कि मेरे पास ये वस्तु है, तब वो जब परीक्षण करके उसको फेंक देता है, पारखी ज्वेलरी, ये तो नकली है, इसका एक पैसा भी तुमको मिलने वाला नहीं है, तब दुखी कौन होगा? बनाने वाला दुखी होगा कि खरीदने वाला दुखी होगा कि पहनने वाला दुखी होगा कि जिसका चोरी हो गया वो दुखी होगा कि जिसने ये नकली है करके डिक्लेयर कर दिया वो दुखी होगा कि कौन दुखी होगा? उद्देश्य उसका था कि इससे मैं सुखी होऊंगा, उस पर आघात हो गया है ना? उस पर उसको आघात पड़ गया, तब वो बहुत दुखी होगा। हमने तो सुना है कि पहले पहले लोकल ट्रेन में माताएं इसी तरह के डुप्लीकेट ज्वेलरी लगाकर चलती थी और चोर उचक के लोग डब्बे में घुसते थे भीड़ के समय में और उसको चोरी करके ले जाते थे। जब बिक्री करने के गए तो नकली सिद्ध हुआ। दूसरे दिन तीसरे दिन उसी महिला के मुख में लाकर फेंक देते थे, ऐसा सुना है वो हमने बम्बई में देखा है। देख लो, हमने ऐसा सुना, ऐसा करते हैं वो उचक के लोग, चोरी करने वाले लोग, भैया के उसी को मार के कि आगे इस तरह किसी को ठगना नहीं। पहनना हो तो असली पहनो, नहीं तो फिर नकली पहन के नहीं चलो, ठगना नहीं, उल्टा हमको ठग बना दिया। देख लो, ऐसा सुना है। तो शंकराचार्य जी का कहना यही है या वेदांत का लक्ष्य यही, उद्देश्य यही है, तुम ठगे न जाओ। तो जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर दो। लेकिन दुनिया ऐसी विचित्र है, कोई भी नकली माल बेचने वाला व्यापारी साइन बोर्ड नहीं लिखता कि मेरे पास नकली माल यहां मिलती है। कहीं साइन बोर्ड पढ़ने को मिला है? कहीं भी यहां नकली माल मिलती है करके साइन बोर्ड किसी ने नहीं लिखा है, कहीं नहीं रखा है। और जबकि यहां असली माल मिलता है करके साइन बोर्ड लिखकर रखकर नकली माल बेचा जा रहा है, होता है कि नहीं बोलो? शुद्ध सोने से बना, सोने का बनाया हुआ आभूषण यहां मिलता है करके साइन बोर्ड लिखा हुआ होता है और वहीं मिलावट भी, मिलावट किए हुए आभूषण भी वहीं पर उसी दुकान से बिक्री होती है जहां ये लिखा रहता है कि शुद्ध सोने से बना हुआ गहना आभूषण यहां मिलता है। शुद्ध प्योर देसी घी का बनाए हुआ मिठाई यहां बिकता है, साइन बोर्ड में वो रहता है। लेकिन साथ साथ ही वहीं मिलावट घी से, डालडे घी से या मिक्सचर घी से बनाया हुआ माल भी बेचा जाता है। किसी हलवाई की दुकान में यहां मिलावट दूध मिलता है या मिलावट मिठाई मिलती है, नकली मिठाई मिलती है, कहीं लिखा हुआ साइन बोर्ड नहीं मिलेगा। और कहां से शंकराचार्य जी आ गए कि जगत झूठा है, नित्य है कहते जा रहे हैं, अरे सत्य है कहते जाओ और बेचे जाओ जगत को। लेकिन शंकराचार्य जी जैसे महाराज संसार को धोखा देना नहीं चाहते हैं ना, तो कह देते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब आश्चर्य की बात यही है कि हम कितनी भ्रम में हैं, कितनी भ्रांत हैं। खुद अपने बायक अपने अलावा सत्य दूसरा है ही नहीं, खुद अपने अलावा स्वयं के अलावा सत्य दूसरा है ही नहीं। लेकिन हम दूसरे सत्य को खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? अपनी सत्यता के बारे में अनभिज्ञ हैं, कुछ पता ही नहीं, कोई खबर नहीं। खुद सत्य हैं, अपनी सत्यता के बारे में कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, बेखबर है, और दूसरा कोई सत्य खोज रहे हैं। अष्टावक्र जी महाराज तो सीधा जनक को ये कह देते हैं, हे जनक, तुम्हारी समस्या ही यही है। तुम्हारी समस्या क्या है बोलो? तुम्हारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्ञाता को ज्ञेय के रूप में खोज रहे हो। किसको? ज्ञाता को ज्ञेय के रूप में खोज रहे हो। तुम्हारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है। दृष्टा को तुम दृश्य के रूप में देखना चाहते हो। दृष्टा यदि दृश्य बन जाएगा, फिर दृष्टा कौन होगा? है? देखने वाला, दिखाई पड़ने वाला पदार्थ बन जाएगा, फिर उसको देखने वाला कौन होगा? फिर उस देखने वाले के अभाव में क्या होगा? सर्वम शून्यम, ये सिद्धांत आ जाएगा। क्योंकि दृष्टा जिस समय दृश्य बन जाता है तो दृष्टा नहीं रहा, दृष्टा नहीं रहा। अब दृष्टा नहीं रहा है तो दृष्टा तो है नहीं, और दृश्य की उपयोगिता और उपलब्धिता नहीं समाप्त हो गया, क्योंकि दृष्टा ही नहीं है। दृष्टा कहां गया? बोले दृश्य बन गया। हे जनक, यही तुम्हारी समस्या है। दृष्टा को दृष्टा कई रूप में निश्चय करो। दृष्टा कभी दृश्य बन ही नहीं सकता। क्या दृष्टा? दृष्टा यदि दृश्य बन जाएगा तो देखेगा कौन? बोलो ना। मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है कि नहीं? बोलो, स्पष्ट है ना? मैं यदि माला बन गया, फिर देखेगा कौन माला को? इसलिए मैं माला तो बन नहीं सकता हूं ना। दृश्य दृष्टा नहीं बन सकता, और दृष्टा दृश्य नहीं बन सकता है। हमें क्या करना है? दृष्टा को दृष्टा कई रूप में निश्चय करो, दृश्य को दृश्य कई रूप में निश्चय करो। ब्रह्म सत्यम का मतलब होता है कि देखने वाला सत्य है। जगन मिथ्या का अर्थ होता है कि दिखाई पड़ने वाला पदार्थ सत्य नहीं है, क्योंकि ये परस्पर विरोधी पदार्थ एक अधिष्ठान में नहीं रह सकते, एक आश्रय में नहीं रह सकते। समझे नहीं? दृश्य भी यदि सत्य हो और दृष्टा भी यदि सत्य हो तो सत्य किस अधिष्ठान में रहेगा या दृश्य किस अधिष्ठान में रहेगा? तो यहां तो अभी आसान है, दृष्टा सत्य है, दृश्य मिथ्या है। मिथ्या दृश्य सत्य दृष्टा अधिष्ठान में रहेगा। तो मैं देखने वाला डुप्लीकेट ज्वेलरी ज्वेलर्स को या ज्वेलरी को देख सकता हूं कि नहीं? डुप्लीकेट ज्वेलरी को, आभूषण को देख सकता हूं कि नहीं? किस रूप में? डुप्लीकेट के रूप में देख सकता हूं। तुम्हें क्या करना है? जगत को इतने रूप में देखो और और डुप्लीकेट हो तो भी गले में पहनने में तो कोई हर्जा नहीं है, हर्जा है? डुप्लीकेट हो तो भी गले में पहनने में कोई हर्जा है? जगत डुप्लीकेट होने मात्र से, जगत मिथ्या होने मात्र से तुम्हें कोई समस्या होगी? मुझे बताओ किसको समस्या होगी, मुझे किसको कोई समस्या होगी? जगत मिथ्या होने पर किसको समस्या होगी मुझे आकर बताओ, है? मेरा वो सिद्धांत याद कर लो आप, मिथ्या प्लस मिथ्या इज इक्वल टू मिथ्या। अरे मिथ्या 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 प्लस हो सकता है क्या? हर्जा है? बाप मिथ्या मां मिथ्या तो उसकी बेटी मिथ्या है कि नहीं, बोलो? बाप मिथ्या मां भी मिथ्या, और मिथ्या बाप मिथ्या मां से जन्मे हुए पैदा हुई हुई बेटी सत्य होगी कि मिथ्या होगी? वो भी मिथ्या हो जाएगी। तो उस बेटी की, मिथ्या बेटी की शादी, मिथ्या शादी करने में तुम्हें कोई हर्जा? उसकी जो शादी करोगे मिथ्या होगी कि सत्य? वो मिथ्या होगा। और तो जो जवाई होगा वो सत्य होगा कि मिथ्या होगा? मिथ्या प्लस मिथ्या, कोई हर्जा कोई कठिनाई, बोलो? संसार आराम से चल जाएगा, जगत आराम से चल जाएगा। मिथ्या बेटी के, मिथ्या जवाई के साथ मिथ्या शादी करा दो, संसार आराम से चलेगा। और वो दोनों मिलकर बच्चे पैदा करेंगे, कैसा? तुम्हारा नाती और पोता होगा, वो कैसा होगा? क्या हर्जा है? मिथ्या पोता पैदा हो जाए तो हर्जा क्या है, बोलो? तुम खुद मिथ्या हो तो तुम्हारा पोता मिथ्या पैदा हो जाए तो हर्जा क्या है, बोलो ना? ये संसार इसी तरह चलता रहेगा। जगत मिथ्या निश्चय करने पर तुम्हारे कोई भी रुकावट, कोई समस्या ही नहीं होगी, और मिथ्यात्व ना जगत चलता ही रहेगा, सारा व्यवहार चलता रहेगा। वेदांत सिद्धांत के आधार पर तुम्हारा शरीर सत्य है कि मिथ्या है, बोलो? वेदांत सिद्धांत के आधार पर तुम्हारा शरीर सत्य है कि मिथ्या है? आज तक इस मिथ्या शरीर को लेकर तुम्हारे व्यवहार में कोई अड़चन आई? शरीर मिथ्या है निश्चय कर लेने पर तुम्हारे व्यवहार में कोई अड़चन आ सकती है? तुम्हारी शादी हुई कि नहीं, बोलो? तुम लोगों की शादी हुई कि नहीं? मिथ्या शरीर होने पर भी शादी हुई कि नहीं? कोई व्यवहार रुकावट हुआ? बाल बच्चे पैदा हुए कि नहीं, कोई रुकावट? व्यापार धंधे हुए कि नहीं? शरीर को मिथ्या निश्चय करने पर जो खाना खाओगे वो भोजन कैसा होगा, है? वो जो भोजन कैसा होगा, बोलो ना? भोजन सत्य होगा? शरीर मिथ्या होगा तो शरीर को लिए, शरीर के लिए जो खाने खाया जाएगा भोजन, वो कैसा होगा? मिथ्या है ना? तो मिथ्या शरीर के लिए मिथ्या भोजन, मिथ्या खाना, ये सब व्यवहार में कोई अड़चन आज तक कोई अड़चन हुई है किसी को? संसार तो चलता ही रहेगा, फर्क क्या होगा? फर्क क्या होगा? चोर दूसरे दिन से लोकल ट्रेन में किसी औरतों की, किसी महिलाओं की गहने चोरी करने नहीं जाएगा, इतने क्या क्या होगा? जब डुप्लीकेट है, ये सभी डुप्लीकेट पहन रहे हैं, सभी नकली पहन रहे हैं, तो मैं क्यों चोरी करूं? कोई दूसरा धंधा खोजेगा क्या? फिर भी वो चोरी करता ही रहेगा? 10-12 दिन तक वो लगातार चोरी करे ट्रेन में, और लगातार यदि नकली गहने उसको मिलते रहे तो क्या वो अभी तक चोरी करता ही रहेगा? वो छोड़ देगा। तो यही तो बात आदि गुरु शंकराचार्य जी वेदांत के माध्यम से, इन स्तोत्रों के माध्यम से हम जिज्ञासुओं के लिए समाधान दे रहे हैं। पहला श्लोक है, कल से सबके हाथ में शायद कॉपी मिल जाएगी, वेदांत डिंडिमा। वेदांत डिंडिमास्तत्त्वम् एकम् उद्घोषयन्ति यत् आस्ताम् पुरस्तात् तत्तेजो दक्षिणाम् मूर्तिसंगितम्। मंगलाचरण श्लोक है। वेदांत डिंडिमास्त, यत् तत्त्वम् उद्घोषितम्, वेदांत ने नगाड़ा बजाकर जो घोष उद्घोष किया है, घोषणा की है, जिस तत्व को, जिस तत्व के बारे में यहां तत्व शब्द प्रयोग किया गया है, तत्व माने तद एव इति तत्व, उसमें सजातीयता विजातीयता या स्वगतता ये भेद है ही नहीं, उसमें मिलावट है ही नहीं, बनावट नहीं है, रियल है, प्योर है, तत्त्व तद एव इति तत्। चैतन्य के अलावा उसमें कोई जड़ का सम्मिश्रण ही नहीं है, जड़ का आभास भी उसमें नहीं है। क्या है वो? तत्तेज, तेज शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, चैतन्य या आत्मा। तेज का अर्थ यहां क्या है? तमो विरोधित्वात् तेज, अज्ञान विरोधित्वात् ज्ञानमपि तेज प्रकाश। अज्ञान का विरोधी होने के कारण ज्ञान क्या है? प्रकाशक है। तमा का विरोधी होने के कारण ज्ञान क्या है? तेज है, प्रकाश है, तेज है। आस्ताम पुरस्तात्, उसी तेज को वेदांतियों ने दक्षिणा मूर्ति संगीतम, उसका वाच्यार्थ दक्षिणामूर्ति है, लक्ष्यार्थ तेज है, उसी तेज को वाच्यार्थ के रूप में दक्षिणामूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यानी ब्रह्म ही, परमात्मा ही गुरु के रूप में उपस्थित हुए हैं। दक्षिणामूर्ति स्मरण करने का प्रयोजन इष्टदेव और गुरु की एकता है, यस्य देव पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, परमात्मा और गुरु की एकता सिद्ध करने के लिए परमात्मा को तेज शब्द के रूप में यह संबोधन किया, प्रकाश ज्ञान जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है, जो लक्ष्यार्थ है, उसी को वह तेज, वह ज्ञान, वह प्रकाश ही, वह परमात्मा ही गुरु के रूप में उपस्थित है, संबोधित है। संगीतम ज्ञापितम, संज्ञा नाम, दक्षिणामूर्ति ये नाम दिया गया है, और दक्षिणामूर्ति गुरुमूर्ति ये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। आप लोगों ने दक्षिणामूर्ति स्तुत, सनत कुमारों का गुरु, सा पूर्वेशम अपि गुरुः कालेनानवच्छेदात। महर्षि पतंजलि परमात्मा को प्रथम गुरु के रूप में संबोधन करते हैं। पूर्वेशम पूर्वे पूर्वेशम अपि सब गुरु, अब वही परंपरा कालेन अनवच्छेद, बीच में अवच्छिन्न होकर वो प्रवाह गुरु परंपरा, वो परंपरा अवरुद्ध नहीं हुई है, आज तक वही प्रवाह अनवच्छिन्न के रूप में हमें प्राप्त होता रहा है। सदा शिव समारंभान शंकराचार्य मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो दक्षिणामूर्ति भगवान शिव को इस गुरु के रूप में स्मरण करते हुए ये मंगलाचरण शुरू किया है, और बाकी दूसरा श्लोक से कल से शुरू करेंगे। कल सबके पास उपलब्ध भी हो जाएगा। और ये वेदांत डिंडिमा स्तोत्र है आदि गुरु शंकराचार्य जी का। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। महाराज जी से फोन में कई दफे बातें होती रहती है, थोड़ी महाराज जी से याद भी होती है और थोड़ी फरियाद भी होती है, तो ये सिलसिला फोन में चालू रहता है। इस समय कुछ क्षमा ही चाहनी थी मुझे कि पंचदशी स्वाध्याय में ले लिया गया था, और मोनिश जी को हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही प्यारा ग्रंथ उन्होंने महाराज जी को जो सूचित किया है, तो उससे यह महीना तो बराबर डिम डिम चलेगा। क्योंकि महाराज जी की जो वाणी है उसमें कोई भी ग्रंथ वेदांत की ऋचा में हम लोग सुन ले, वह अद्वितीय रीत से हमें सामने रजू होता है, और उसका जो हमें प्रसाद के रूप प्रवचन मिलता है वो अद्भुत रहता है। तो ऐसी पुनीत वाणी को हम क्षमा के साथ नमन करते हैं। पूज्य महाराज जी, जैसे हमें सब पता है कि नेपाल से विशेष रूप से यहां प्रेमपुरी आश्रम में ही पधार कर यहां हमें अनुग्रहित करते हैं। प्रातः प्रवचन स्वाध्याय एवं कुछ दिनों बाद सायं प्रवचन में भी पूज्य महाराज जी को सुनने का पुनीत लाभ हमें प्राप्त होगा। ऐसी विद्वत वाणी हम बार बार सुने और आनंद लें, और जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें उपस्थित हो लोग उसको हम प्रयत्न करें। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए